नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर। वरिष्ठ राजनीतिक नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र का लक्ष्य 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करना है। कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। भारत ने ईरान और इसराइल से हिंसा छोड़कर कूटनीति पर लौटने का आग्रह किया। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉ बीआर आम्बेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पीपरिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसानों और गरीबों को समर्पित है।
ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है, दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे का मजबूत विस्तार भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र का लक्ष्य 140 करोड़ लोगों को सपनों को हकीकत में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में बढ़ती अस्थिरता और तनाव के बीच देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता पर बल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी करते समय प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न देशों में संकट के समय भारतीयों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में बहुमत से चुनी गई मजबूत और स्थिर सरकार की आवश्यकता कई गुना बढ़ जाती है। श्री मोदी का बयान ऐसे समय आया है जब कल ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। पार्टी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आज दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में रोजगार देने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पर दोषारोपण करती है, लेकिन भ्रष्ट आचरण के आरोपों का सामना कर रहे 23 कांग्रेसी सदस्यों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। श्री खड़गे ने नागपुर में आज गोलीबार चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और उसके नेताओं ने भारतीय लोगों से झूठे वादे किए हैं। भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ाने और कानूनी गारंटी देने के वादे को याद दिलाया जिनकी देशभर के किसान मांग कर रहे हैं।
अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। अब युवा नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, तभी दाम खाने पीने के और सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों और उनके मुद्दों से पूरी तरह कटे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्ति है कि आसपास के लोग सच बताने से डरते हैं। राजस्थान के जालौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
केंद्र में जो 30 लाख रोजगार खाली पड़े हुए हैं उन्हें हम भरेंगे। जो गिग इकोनॉमी में काम करता है, तो हम उनको सामाजिक सुरक्षा देंगे। 5,000 करोड़ का हम एक फंड बनाएंगे जो सिर्फ नौजवानों के लिए होगा। पेपर लीक की बड़ी समस्या है, तो इसको रोकने के लिए हम पूरे देश भर में एक कानून लागू करेंगे, एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे।
आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 10 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा अपने वादे पूरे नहीं कर पाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख सुश्री मायावती ने आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और कहा कि यदि केंद्र में उनकी सरकार आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाएगा।
पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बने तो इसके लिए भी जब सेंट्रल में हमारी सरकार बनेगी जरूर ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भाजपा के घोषणा पत्र को विफल बैंक का पोस्ट डेटेड चेक करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को नकार देगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लोगों के दुख कम करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भाजपा के घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें युवाओं, किसानों या रोजगार का कोई जिक्र नहीं है और बिहार जैसे राज्यों के लिए कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने जनता को गुमराह करने के लिए राजनीतिक दलों की आलोचना की। श्री आजाद ने आज डोडा जिले के भालेसा में ऊधमपुर लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार जीएम सरूरी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए क्षेत्र के विकास में अन्य नेताओं के योगदान पर सवाल उठाया। डोडा उधमपुर संसदीय क्षेत्र से INDI गठबंधन के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह के लिए समर्थन मांगने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज बनिहाल निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। श्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि लोग कथित भ्रष्टाचार, लूट और कुशासन के कारण वर्तमान सरकार से तंग आ चुके हैं। देश के प्रमुख लोकसभा सीटों की श्रृंखला में आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट के बारे में हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
जबलपुर की लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए है और प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। जबलपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस सीट पर 18,83,000 से ज्यादा मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से करीब 9,57,000 पुरुष और 9,26,000 महिला मतदाता हैं, जबकि 97 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। जबलपुर में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने आशीष दुबे को टिकट दिया है जबकि कांग्रेस ने दिनेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी और कई स्थानीय पार्टियों के साथ ही 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के राकेश सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार विवेक कृष्ण तनखा को करीब 4.5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। रक्षा मंत्रालय की निर्माण इकाइयों के लिए मशहूर जबलपुर सीट पर पिछले 27 सालों से भाजपा का कब्जा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के खैरागढ़ नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यदि केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा।
ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है सिर्फ छत्तीसगढ़ में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नक्सलवाद को हम छत्तीसगढ़ से समाप्त कर देंगे।
श्री अमित शाह ने कहा कि देश में आरक्षण हमेशा बना रहेगा और उनकी पार्टी किसी को भी इसे खत्म नहीं करने देगी। प्रमुख राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता कल केरल में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
विदेश मंत्रालय ने इसराइल और ईरान के बीच बढ़ रहे तनाव पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा कि भारत इसराइल और ईरान के बीच बिगड़ती स्थिति को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है, इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि वह वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और दोनों देशों में स्थित दूतावास भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। भारत ने ईरान और इसराइल से हिंसा से दूर रहने और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया। राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉ भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य समारोह संसद भवन परिसर में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में डॉ भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
डियर वोटर्स, इलेक्शंस आर हियर। डाउनलोड योर वोटर हेल्पलाइन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर एंड मेक श्योर योर नेम इज देयर इन द इलेक्टोरल लिस्ट। वोटर हेल्पलाइन ऐप ऑल्सो हेल्प्स इन वोटर रजिस्ट्रेशन, सर्च इन इलेक्टोरल रोल, इन्फॉर्मेशन ऑन द कैंडिडेट, इलेक्शन रिजल्ट, कम्प्लेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन ईवीएम एंड इलेक्शन प्रोसेस। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हरा दिया है। 162 रन के लक्ष्य के जवाब में नाइट राइडर्स ने 16वें ओवर में 2 विकेट गंवाकर जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में इस समय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर चेन्नई सुपर किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। कल बेंगलुरू में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने आज नासिक से 781 बंगाल मॉनिटर छिपकली हेमिपेंस, जिसे हत्था जोड़ी के नाम से जाना जाता है, और 19 किलोग्राम से अधिक नरम मूंगे जब्त किए हैं। ये दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। खुफिया सूचना मिलने पर डीआरआई अधिकारियों ने योजना बनाकर वन्यजीव तस्करों को उत्पाद सहित हिरासत में ले लिया है। मौसम विभाग ने कल तक देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में कल तक बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा के साथ आंधी भी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर। वरिष्ठ राजनीतिक नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा के संकल्प पत्र का लक्ष्य 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करना है। कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। भारत ने ईरान और इसराइल से हिंसा छोड़कर कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया और राष्ट्र आज संविधान निर्माता डॉ भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।